मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 8 अप्रैल 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं राहुल सोनी बांदा उत्तर प्रदेश से और रविन्द्र चौहान शुजालपुर मध्य प्रदेश से। दोस्तों जो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्लासेस शुरू की हैं AFEIS ने उसके बारे में आप सब बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछते रहते हैं, आप लोगों की कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, तो दो तीन जो कुछ इस तरह के प्रश्न मैंने अभी छांटे हैं थोड़ा समय पहले उनके उत्तर देना चाहूंगा। चूंकि ऑनलाइन जो क्लासेस की जो स्टडी है वो एक नई तरह की परंपरा विकसित हो रही है और खासकर आप देख रहे हैं कि जब कोरोना वायरस का जो संकट पैदा हुआ है देशों में तो अब बहुत से स्कूल और कॉलेजेस ने तुरंत ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं क्योंकि अब पता नहीं लग रहा है कि क्लासेस कब से शुरू होंगी, चाहे वो मिडिल स्कूल की क्लासेस हो, हायर सेकेंडरीज की क्लासेस हो, यहां तक कि बहुत से कॉलेजेस ने भी ऐसा कर दिया है, यहां तक कि दूसरे जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, योगा की क्लासेस लग रही थी, वह सीधे सीधे क्लास में जाते थे आप, वहां बैठ करके अपने योगा करते थे, उन लोगों ने भी अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। यानी कि आप ऑनलाइन देखिए और अपने घर पर ही बैठ करके योगा कीजिए, सोच करके देखिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोरोना वायरस धीरे धीरे हम सबको ऑनलाइन की तरफ जाने के लिए कहीं कहीं अभ्यस्त कर रहा है, हमें आदि बना रहा है। तो दोस्तों ऐसे में स्वाभाविक है कि आप अपनी तरफ से कुछ प्रश्न पूछेंगे, चूंकि यह एक बिल्कुल नई विधा विकसित हो रही है, तो चूंकि स्पष्टता दिमाग में नहीं है तो हो सकता है कि मैं जो कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं वो सब आपको थोड़े से बड़े नए से लगे, हास्यास्पद से लगे, लेकिन चूंकि एक नई विधा है तो मैं ये मान करके चलता हूं कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाने स्वाभाविक है। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनके मैं जवाब दे रहा हूं। आप लोगों ने जानना चाहा है कि इसे कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है, इसे कौन फायदा उठा सकता है, उसका सीधा सा जवाब है अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो कोई भी स्टूडेंट, आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप ग्रेजुएट ही हों या आप कॉलेज गोइंग ही हों या आपकी उम्र इतनी ही हो या आपके इतने मार्क्स आए हों, इस तरह की कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है और साथ ही साथ कभी भी करा सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे को नहीं होगा या रात में नहीं होगा। देखिए तो ऑनलाइन का मामला है, आप नेट पर जाइए और वहां जाकर के जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए, जो कहा गया है वो कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो न तो इसमें समय की कोई बाध्यता है और न ही यूं कह लीजिए कि स्थान की भी बाध्यता है, आप पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी हो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कुछ लोगों ने जानना चाहा है कि कराने के बाद कब से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो मित्रों बस थोड़ी सी उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, ज्यादा वक्त नहीं, कुछ घंटे एक आध दिन, और इसके बाद फिर आपको लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ा सा अधिक समय भी लग जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक दो दिन के अंदर आपको लेक्चर्स मिलने लगते हैं, फिर आप अपने ढंग से उन लेक्चर्स को सुनिए, उन लेक्चर्स का लाभ उठाइए। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि आपको बहुत सस्ता पड़ता है, आपको अपने घर पर चीज़ें मिलती हैं और अपेक्षाकृत उनका जो स्तर भी है वो अपेक्षाकृत, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हुई है, फिर उसकी एडिटिंग हुई है, उस पर ढेर सारा बाद में काम होता है, इसलिए वो अपेक्षाकृत काफी कुछ यूं कह लीजिए कि स्तरीय भी होते हैं। तो ये दोस्तों कुछ सूचनाएं थी, कुछ जानकारियां थी ऑनलाइन क्लासेस पर पूछे गए प्रश्नों के बारे में। मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आज आप सबसे तबलीगी जमात के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं जो इस बीच में चर्चा में आई हैं। दो शब्द अभी आप सुन रहे होंगे, वायरस और बैक्टीरिया, इसके बारे में आप सब जानते भी होंगे लेकिन थोड़ी सी चर्चा मैं यहां कह दूं। देखिए जो वायरस, अभी जो कोरोना है वो वायरस है, ये बहुत छोटा होता है, अगर हम दोनों की तुलना करें तो बैक्टीरिया से कई गुना ज्यादा छोटा होता है ये, और इसे हम हिंदी में कहते हैं विषाणु, विष, विष का अणु, सोच करके देखिए। तो वायरस बहुत खतरनाक होता है, मतलब जो वायरस होगा वो हार्मफुल ही होगा, हानिकारक ही होगा, और ये जो वायरस होते हैं ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट कहने का मतलब है कि ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे अमरबेल होता है ना, तो अमरबेल की कोई जड़ नहीं होती है, वो दूसरे पेड़ों पर छाती है। ठीक इसी तरह से ये विषाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर इन्हें कोई सहारा न मिले तो ये मर जाएंगे, ये दूसरों पर ही जीवित होते हैं। ये है बैक्टीरिया, और ये है सॉरी वायरस। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का हिंदी में नाम है जीवाणु, यानी कि ये जीव है, बैक्टीरिया जीव है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक कोशीय जीव आप कह सकते हैं, और ये हजारों लाखों की संख्या में होते हैं और हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं और प्राकृतिक तौर पर ये वातावरण में भी मौजूद रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि बहुत कम ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं, अदरवाइज ये लाभदायक होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि इसको इन्फेक्शन हो गया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो वहां वो नुकसानदायक है। अदरवाइज दूध से जो दही बनता है, वो दही बनता कैसे है आपको शायद जानकारी होगी कि एक बैक्टीरिया ही उसे दही बनाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, LACTOBACILUS, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। और इसको ये जब दूध में जाता है तो ये क्या करता है कि दूध में जो शुगर का कंपोनेंट होता है उसको खा जाता है और उसकी जगह पर फिर लैक्टिक एसिड पैदा करता है, उसे दही बन जाता है। तो देखिए अब यहाँ जो बैक्टीरिया है वो फायदा करने वाली चीज है ना। तो बैक्टीरिया और खासकर जो वायरस है उसके बारे में थोड़ी सी आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। मित्रों, स्पेनिश फ्लू का नाम आपने सुना होगा इस बीच में, स्पेनिश फ्लू, ये फ्लू है, जैसे वायरस को भी आप एक तरह से फ्लू पैदा करने वाला एक विषाणु मान लीजिए। ये 1918 में, जनवरी 1918 में स्पेन से ही पैदा हुआ था और लगभग 2 साल तक चला, और ये बहुत भयानक रहा। सोच करके देखिए, आज से 100 साल पहले, उस समय तो इतनी दवाइयां भी नहीं थी और मेडिकल इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, और नतीजा ये हुआ कि लगभग 50 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए थे, संक्रमित हुए थे, और उससे कहा जाता है कि लगभग 5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी, 5 करोड़ लोग, और भारत में इससे मरने वाले की जो संख्या है करीब करीब 2.25 करोड़ के आसपास रही है। स्पेनिश फ्लू बेसिकली ये इन्फ्लुएंजा था, और इसका जो प्रभाव था वो श्वसन तंत्र पर था, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर पड़ता था, और ये भी संक्रामक ही था, कंटेजियस था, बकायदे कंटेजियस फैलता था, 1 से 2, 2 से 4, और उस समय बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। उस समय के काफी कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं और जो एड वगैरह हैं अखबारों में छपे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, एक दूसरे से दूर रहिए, हाथ धोइए, जो आज कोरोना वायरस के बारे में कहा जा रहा है, उसी तरह की बहुत सारी बातें स्पेनिश फ्लू के बारे में भी कही जाती थी। तो ये जानकारी आपको थोड़ी सी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह तबलीगी जमात है ना। इस विषय को मैंने क्यों चुना उसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। पहले आइए कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा मरकत, है ना, निजामुद्दीन में वो मरकत में आए हुए थे, ये एक संगठन है। तो मरकत का जो मतलब होता है वैसे होता है केंद्र, सेंटर, लेकिन यहां आप कह सकते हैं मुख्यालय। जो निजामुद्दीन है दिल्ली का, वहां इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, आप कह लीजिए इसका केंद्र है। जो तबलीगी जमात है बेसिकली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है धर्म प्रचार का। इसमें जो तबलीगी है, तबलीगी शब्द का मतलब है अल्लाह के संदेशों का प्रचार करने वाला, यानी कि जो अल्लाह है उनके संदेशों का लोगों तक प्रचार करने जाना तबलीगी। और जो जमात है, जमात का मतलब होता है समूह, ग्रुप, यानी कि जो तबलीगी जमात है या ऐसे लोगों का समूह है जो अल्लाह के संदेशों को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मेरी समझ से दोनों शब्द आपको क्लियर हो गए, तबलीगी जमात और जो मरकत शब्द है, मरकत शब्द भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आप देखिए कि यह है क्या, थोड़ी सी इसके बारे में आइए जान लेते हैं। बेसिकली जो सुन्नी इस्लामी धर्म है उसका ये प्रचार आंदोलन है, या यूं कह सकते हैं कि सुन्नी इस्लामी धर्म का प्रचार आंदोलन है। और ये बेसिकली जो मोहम्मद साहब हुए, जो प्रॉफिट हुए हैं मोहम्मद साहब, उनके मूल सिद्धांतों की बात करता है। मतलब इसका कहना यह है कि जो मोहम्मद साहब के मूल सिद्धांत हैं वही बेसिकली इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत हैं, है ना, तो फिर वो कुरान है, हदीस है, इन सब की वो बातें करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, है ना। जो यहाँ मरकत में जो इकट्ठे हुए थे, वो इनका एक जलसा सा होता है, वहाँ लोग आते हैं, आपस में इस्लाम धर्म के बारे में उसकी जो शिक्षाएं हैं उसके बातचीत करते हैं, और इसके बाद यहाँ से फिर बातचीत करके वो देश और पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों पर जा करके जो भी उन लोगों ने फैसले किए हैं उनका वो प्रचार प्रसार करते हैं। ये जो आंदोलन है तबलीगी जमात, इसकी स्थापना 1926-27 में भारत में हुई थी। हरियाणा की एक जगह है मेवात, ये दिल्ली के काफ़ी करीब है मेवात, वहाँ इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं वो मौलाना मोहम्मद इलियास, मौलाना मोहम्मद इलियास ने 1926-27 के दौरान हरियाणा के मेवात में इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों, पूरे विश्व में इसके लगभग 15 करोड़ अनुयायी हैं, पूरे विश्व में 15 करोड़ अनुयायी बहुत बड़ी संख्या होती है। इसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन्हें थोड़ा सा आप देख लीजिए। अल्लाह पर भरोसा कीजिए, दूसरा नमाज पढ़ना है, अगला है आपको आपस में धार्मिक बातें करनी है, हर व्यक्ति को जो इसमें शामिल है अपनी नीयत को साफ रखना है, यानी कि उनको अपने बहुत ईमानदार रहना है, और फिर जो मुसलमान हैं उनका आपस में सम्मान करना है और एक दूसरे की मदद भी करनी है। ये इनके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। तो आप देखिए कि जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो बहुत ही मानवीय सिद्धांत हैं, और आपको महसूस होगा कि ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं ये लगभग सभी धर्मों में कही जाती हैं, क्योंकि धर्म यही है जो जीवन को बेहतर बनाए, जो लोगों की मदद करे, जो अस्तित्व की रक्षा करे, वही धर्म है जिसे हम धारण कर सकते हैं, वही धर्म है। और यहां धारण करने वाली बातें ही सब कही जा रही हैं। तो दोस्तों, ये इसके मूलभूत सिद्धांत थे। और मैंने कहा कि 1926-27 के आसपास इसकी स्थापना हुई है, तो उस समय का जो दौर है, फ्रीडम मूवमेंट का जो दौर है, उस समय पर अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस संगठन की जरूरत क्यों पड़ी थी, इस जमात की स्थापना क्यों हुई थी। इस पूरे के पूरे विषय को लेकर के मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप सबसे कभी मुख्य विषय के तहत बात करूं, क्योंकि इस बार मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा दौर रहा है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का जब बहुत सारे धार्मिक संगठन उभरने लगे थे। तो क्यों उभर रहे थे, उसके पीछे क्या रीजन थे, उन सबको मुझे लगता है कि हर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जानना ही चाहिए। और यदि मैं इस पर बात नहीं भी कर सका तो मैं आप सबको सलाह दूंगा कि इस टॉपिक पर आप सबको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। इस ये बात छोड़िए कि आप मेंस में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं बलजीत कौर, पुलकित उषा सरकार इलाहाबाद से, और सुयश तिर्की। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।